बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम।
श्री साईं बाबा परब्रह्म के सगुण अवतार थे। बाहरी रूप से देखने में वो सामान्य लोगों की तरह नजर आते थे, लेकिन परमात्मा रूप से वो सबके हृदय में वास करते थे। वो निरासक्त शांत चित्त रहकर परोपकार किया करते थे। लोकाचार के लिए ही संभवतः वो साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार किया करते थे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्वभाव के श्री साईं बाबा कभी तो प्रेम की अपूर्व वृष्टि करते थे और कभी क्रोधावेश में पत्थर बरसाने लगते, गालियां देने लगते थे, लेकिन वो सदैव अपने आत्म स्वरूप में मग्न रहा करते थे। वो कभी भ्रमण नहीं करते थे और एक ही आसन पर विराजते थे। उनके पास एक छोटी लकड़ी थी जिसे वो बड़ा संभाल कर रखते थे। वो सदैव विचार शून्य रहा करते थे। निर्वाह करने मात्र के लिए ही उन्होंने भिक्षा वृत्ति को अपना रखा था। उनके मुखार विंद से हर पल अल्लाह मालिक मुखरित होता रहता था। श्री साईं बाबा का स्वरूप दिव्य था। वो लोग दुर्भाग्यशाली थे जिन्होंने श्री साईं बाबा को सामान्य संत समझा। जो आज भी श्री साईं बाबा को सामान्य संत ही समझते हैं, वो भी दुर्भाग्यशाली है। वो शिरडी में पहली बार तब आए थे जब 16 वर्ष के तरुण थे। उस समय 3 वर्ष शिरडी रहकर वो अंतर्धान हो गए। दूसरी बार चांद पाटिल के साले के लड़के की शादी में बाराती बनकर शिरडी आए थे। तब वो 20 वर्ष के थे। तब से वो 60 वर्ष तक शिरडी में ही रहे। इस तरह अनुमान लगाया जाए तो 80 वर्ष की आयु में उन्होंने 1918 में महासमाधि ले ली। संसार में रहते हुए भी वो सांसारिक पदार्थों का उपभोग अरुचि से क्या करते थे। जहाँ वासनाएं अहम व अन्य चेष्टाओं का लोप हो जाता है, वहाँ शुद्ध चैतन्य रूप उजागर हो जाता है। श्री साईं बाबा ऐसे ही शून्य चैतन्य स्वरूप थे। वो बाल ब्रह्मचारी, बंधनों से मुक्त पूर्ण ब्रह्म थे। मान अपमान का भी उन्हें बोध नहीं था। इस संदर्भ में उनके एक भक्त नानावली का प्रसंग देना उचित है। नानावली बाबा का बड़ा विचित्र भक्त था। वो कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं होता था। वहीं बाबा के कार्यों को भी किया करता था। एक बार की बात है कि बाबा मस्जिद में विराजमान थे। नानावली जल्दी से उनके निकट गया और बोला कि उठो उठो, गद्दी से उठ जाओ। वस्तुतः वो स्वयं बाबा की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके उठाने पर बाबा गद्दी से तुरंत उठ गए। फिर नानावली स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कुछ देर बैठकर वो उठ गया और बाबा को गद्दी पर बैठ जाने को कहा। बाबा फिर गद्दी पर विराजमान हो गए। तब वो उनके श्री चरणों में गिर पड़ा। नानावली द्वारा उठा देने और फिर बैठा देने की बात का बाबा ने जरा भी बुरा नहीं माना। वो मुस्कुराते। इस प्रसंग से बाबा की विनम्रता का संकेत मिलता है।